बोलती कहानियां
नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है मेहरी और लेखक है मुंशी प्रेमचंद। भगवान भला करे लल्लू जी की माँ का, जिनके बल पर हर प्रकार का आराम है। अन्यथा डाकखाने की नौकरी, जहाँ 7-8 घंटे की हाजिरी और कभी दफ्तर को देर ना हो, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। घर बार का सारा काम सदा स्वयं ही समय पर हो जाता है, हमारी गाड़ी कभी लेट होती ही नहीं। घर की सभी चूल्हें घड़ी के पुर्जों की भांति सदा अपनी अपनी जगह पर ठीक रहती हैं। ये सब लल्लू जी की माँ का जादू है। यदि मुझे किसी छुट्टी के दिन दफ्तर जाना पड़ जाए तो रो पड़ूं, लेकिन वे बेचारी हैं कि उनको न इतवार से मतलब न बड़े दिन से। काम है कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मेरा घमंड वेतन के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन वे उफ तक नहीं करती। घर में प्रभु की कृपा से 4 बच्चे हैं, उनके ही काम से एक औरत को अवकाश मिलना कठिन है। फिर पता नहीं वे अन्य कामों के लिए किस प्रकार समय निकाल लेती हैं। मेरे व्यक्तिगत सुख के सभी काम वे स्वयं ही करती हैं। जाड़े में सुबह सुबह गर्म पानी मौजूद, हजामत का सामान अपनी जगह तैयार, पूजा के बर्तन साफ, पॉलिश किए हुए जूते, अर्थात कहीं से उंगली रखने का कोई अवसर न मिले। इस पर मज़ा ये कि इन बातों में कुछ खर्च नहीं होता। एक ज़माना था कि मुझे 20 रुपये मासिक मिलते थे। उस समय देसी जूते और साधारण से चारखाने के कोट पर गुजर होती थी। अब परमात्मा की कृपा से 100 रुपये मासिक मिलते हैं तो पॉलिशदार जूता और रेशमी कोट से कम नहीं चाहिए। पर वे बेचारी हैं कि जिस प्रकार पहले रहती थीं उसी प्रकार आज भी गुजर करती हैं। केवल दूसरे साल एक गहना और कार्तिकी के दिन त्रिवेणी स्नान, इसी में प्रसन्न है। इधर हम लोग हैं कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होती है, लेकिन धन्यवाद के स्थान पर सदा उलाहना उपालंब ही मुंह पर रहता है, और हर समय पोस्टल एसोसिएशन की पुकार कि वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी और दफ्तर के कार्य का समय कम रखा जाए और कोई भी अधिकारी आंख उठाकर न देख सके। मैं जो दाल चावल खाता हूँ वही वे भी खाती हैं। ईश्वर की देन है कि उन्हें संतोष रहता है और मुझे असंतोष और अधीरता। मैं पूरा का पूरा वेतन लल्लू जी की माँ के हाथ में ही देता हूँ और मुझे वह सुख सुविधा मिलती है जो 300 रुपये के अफसर को भी नसीब ना हो। अतिथि भी प्रसन्न रहते हैं और सभी संबंधी भी संतुष्ट हैं। सच पूछिए तो जितना काम वे करती हैं वो 100 रुपये से अधिक का होता है। साहब लोग अपने बच्चों के लिए 15-20 रुपये मासिक पर आया रखते हैं, लेकिन उनको वो आराम और प्यार नसीब नहीं होता जो मेरे बच्चों को है। यदि मैं एक बावर्ची रखूं तो कम से कम 10 रुपये मासिक और भोजन देने पर भी इतना अच्छा खाना नहीं बन सकता। इस पर मज़ा ये कि सदा खर्च में किफ़ायत दृष्टि में रहती है। यदि मैं 15 रुपये मासिक पर अपने लिए एक बैरा रखूं, तो भी वो इतनी देखभाल और रखरखाव नहीं कर सकेगा। फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई ही 10-15 रुपये मासिक की हो जाती है। झाड़ू बर्तन की नौकरानी 10-5 रुपये मासिक ले जाती। अर्थात चाहे जो हिसाब लगाइए, यदि मेरा लगभग समस्त वेतन भी नौकरों को भेंट कर दिया जाए तो भी इतना आराम नसीब नहीं हो सकता जितना कि इस भगवान के रहने से उपलब्ध है। इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव समझिए या अखबार पढ़ने अथवा बड़े बड़े नेताओं के भाषणों का परिणाम। प्रायः मेरे मन में आता है कि अपने जीवन साथी से इतनी मेहनत कराना भारी अत्याचार है, और वास्तव में एक औरत का इस सीमा तक काम करना अन्याय है। लेकिन वो बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। संभवतः उनके मन में कभी विचार ही नहीं आता है। मेरे मन में कभी कभी उफान सा उठता है कि एक मेहरी या नौकरानी रख दूं तो शायद उन्हें कुछ आराम मिले। वास्तव में बहुत स्वार्थ की बात है कि मैं तो बाबू बना हुआ हर प्रकार का आराम उठाऊं और घर की देवी नौकरानी की भांति दिन भर काम ही करती रहे। लेकिन जब कभी देवी जी से इसकी चर्चा होती है तो वे सदा हंसकर टाल देती हैं।
क्यों बेकार में खर्च बढ़ाओगे,
मैं कुछ पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो दिन पर पलंग पर लेटी रहूं या सुबह शाम पार्क की सैर को जाऊं। जिस तरह काम चलता है चलने दो। यदि मैं दबाव देता हूं तो वे कहने लगती हैं, मैं तो मना नहीं करती, मेहरी रख लो। मेरे समय से पहले तो घर में सदा एक नौकरानी रही, मुझे वही समय याद आता है। बुढ़िया नौली के बाद घर में कोई नौकरानी नहीं रही। भगवान भला करे, उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन मरते दम तक अकेली ही सारा काम करती रही। सदा सेवा की, स्वयं कभी बीमारी तक में कोई सेवा ना ली। उस पर मज़ा ये कि केवल एक रुपया वेतन और खाने पर, वो उम्र भर का वेतन भी मरने पर घर में ही छोड़कर मरी। माँ से अधिक सेवा करने वाली, दुख दर्द बांटने वाली, अब ऐसे नौकर कहाँ मिलते हैं। क्या समय था, अत्यल्प वेतन पर भी लोग संपन्न थे। इसके प्रतिकूल आजकल ये समय है कि आय और व्यय दोनों में वृद्धि, उस पर भी हर समय असंतोष। पहले प्रत्येक वस्तु सस्ती थी, लट्ठा और उत्तम मलमल चार आने गज, अच्छी मिठाई 5-6 आने सेर। अब खर्च दुगना हो गया है, मगर वो बात ढूंढे नहीं मिलती। भगवान करे वो समय एक बार तो पुनः आ जाए, चाहे थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन एक बार तो टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिक जाए। अब मैंने किसी आवश्यकता के कारण नहीं और न ही किसी के कहने पर, बल्कि अपनी इच्छा से, फैशन की दृष्टि से एक मेहरी रखने का संकल्प कर लिया, लेकिन यह संकल्प रास नहीं आया। हर बार नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ा और आराम तो एक और, चिंता ही चिंता रही। प्रतिदिन बर्तनों और कपड़ों का गुम होना आरंभ हुआ, खर्चे अत्यधिक बढ़ गए। यदि पहले 10-15 रुपए के घी में काम चल जाता था तो अब 25 का लगने लगा। नौकरानी है कि हर समय अपने पिछले स्वामी की बड़ाई का गीत गाती रहती है, वहाँ ये होता था, वहाँ वो होता था। इस प्रकार घी पतनालों में बहाया जाता था, दूध से बर्तन धुलते थे, ये मिलता था, वो मिलता था, अर्थात आराम कम और खर्च अधिक हो गया। हर समय की बगझक ऊपर से। पहली नौकरानी जो मिली उसकी अवस्था 20-22 वर्ष की रही होगी। आप उसे रूपसी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो शिष्ट अवश्य थी और उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक भी थी। यद्यपि कोई विशेष बात नहीं हुई, लेकिन देवी जी को शिकायत ही रही। वे कहती, अब मैं दफ्तर देर से जाता हूँ और शीघ्र लौट आता हूँ, लेकिन मैं पूरे समय दफ्तर में ही रहता था। डाकखाने की नौकरी में देरी और जल्दी कैसी। दूसरी शिकायत ये हुई कि मैं जमुना की ओर बहुत देखता हूँ, हर समय उसी से बातें करता रहता हूँ। यद्यपि मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगी, लेकिन जब शिकायत बढ़ते बढ़ते कष्ट और शोक तक जा पहुँची तो अंततः मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके पश्चात मैंने ढूंढकर एक बुढ़िया रखी ताकि घर में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो और आवश्यकता भी पूरी हो जाए, लेकिन ये प्रयोग भी असफल रहा। बुढ़िया से ना तो पानी से भरा कोई बर्तन ही उठता, न पलंग उठा सकती। वो तो हड्डियों और खाल का एक थैला भर थी, और सच पूछिए तो उसे स्वयं ही एक सेवक की आवश्यकता थी। बहरहाल लल्लू जी की माँ को उससे कोई आराम नहीं मिला। उन्हें पहले जितना काम करना पड़ता था अब भी उतना ही करना पड़ता था, लेकिन बीच में मैं बेवकूफ़ बना। संक्षेप यह कि अंततः उसे भी नौकरी से निकाल दिया और अब एक मध्यम आयु वाली की खोज आरंभ हुई। सर्विस सीकिंग एजेंसी के माध्यम से एक 40 वर्षीय नौकरानी मिली। उससे पहले अनेक सेविकाएं आईं और चली गईं। कोई काम का विवरण पूछती और काम बताया जाता तो यह कहती हुई उल्टे पांव चली जाती कि यह काम तो दो नौकरों का है और वेतन एक का भी नहीं। इस पर जब दूसरी मेहरी आई तो मैंने कहा, अरे काम तो कुछ भी नहीं है, बस पलंग बिछाकर पड़े रहना होगा। तब वो भी चली गई। विचित्र दशा है, यदि काम लेता हूं तो नौकर नहीं रहता, यदि कहता हूं कोई काम नहीं तो भी कोई परिणाम नहीं निकलता। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के पश्चात एक और मिली, जिस पर न किसी प्रकार के संदेह हो सकते थे और जो कामचोर भी नहीं थी। हर प्रकार से अपनी बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार कर उसे नौकर रखा। थोड़े समय में पता चला कि ये औरत जब चाहती तब अच्छा काम करती और जब ना चाहती तो कुछ ना करती। ऊपर से ये कि जब जी में आता धृष्टता का व्यवहार करती। एक दिन की घटना सुनिए देवी जी ने थाली में मिट्टी और मिट्टी में पंजे का निशान देखा तो उससे पूछा, चंपा ये थाली तो बहुत मैली है। चंपा बोली, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं, मैं ही क्या सभी देख सकते हैं, मगर ये मेरी नहीं है, आपकी बड़ी लड़की हुमा की होगी, लड़के तो इस घर में मिट्टी से ही खेला करते हैं। देवी ने कहा, अरे चंपा क्यों इतना झूठ बोलती है, लड़की के इतनी बड़ी उंगलियां कहाँ, बेकार बातें बनाती है और बच्चों को बदनाम करती है। चंपा बोली, मैं तो बस बात बनाती हूँ लेकिन झूठ तो तुम ही बोलती हो। देवी ने कहा, जबान संभाल कर बात कर, ये महीना पूरा हो तो हम तुझे बर्खास्त कर देंगे। और चंपा बोली, तुम क्या बर्खास्त करोगी, मैं खुद ही थोड़े दिनों में ये नौकरी छोड़ने वाली हूँ, केवल अपना सुभीता देख रही थी, मेरा आदमी तो हैरान है कि मैं इतने दिन यहाँ रह कैसे गई, वे तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ थे, यहाँ किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता, सब चीज़ों पर ताले और मोहरें लगी हैं, सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है, ये बात तो साफ है कि यहाँ कभी कोई नौकर रहा नहीं है। जब मैं शाम को दफ्तर से आया तो मुझे ये बात पता चली, मैंने यह कहकर टाल दिया कि तुमको नौकर नहीं रखना है तो निकाल दो, जो मैंने लल्लू जी की माँ के साथ किया उस अन्याय पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। खैर उस समय तो ये बात आई गई हो गई और मैंने चंपा को समझा दिया और फिर कुछ दिनों तक काम चलता रहा। एक और दिन की बात सुनिए, देवी जी ने 10 बार चंपा चंपा पुकारा, वो नीचे थी लेकिन बोली नहीं, चंपा सुनती है लेकिन बोलती नहीं। तब देवी जी नीचे आईं और बोली, तुझे 50 आवाज़ें दीं तूने जवाब न दिया। चंपा बोली, अरे बीबी रहने दो, क्यों झूठ बोलती हो, तुमने 10 बार ही तो पुकारा और 50 बार कहती हो, तुमने ही तो कहा था महीना बंद हो जाए तो हम निकाल देंगे और आज 1 तारीख है, अब मैं क्यों बोलूं। देवी जी गुस्से से आग होकर चली आईं, चंपा उत्तर देने में भिजली, बेचारी पर्दे में रहने वाली देवी जी चुप होकर मेरे कारण गुस्सा पी जाती और मुझसे कुछ ना कहती, मेरा कमरा भली प्रकार साफ ना होता और यदि वे कुछ कहती तो चंपा कहती, कौन बड़ा साफ कमरा है, एक दिन चंपा ने चीनी मिट्टी के गुलदान तोड़ डाले, देवी जी ने पूछा तो बोली, लड़कों ने तोड़े हैं, देवी जी ने कहा लड़के इनको कभी नहीं छूते, तो चंपा बोली, तो सब मैंने ही तोड़ दिए, मुझे कब कहा था कि गुलदान ना तोड़ें, शीशे के बर्तनों को कहा था सो आज तक एक भी नहीं टूटा है, अरे जो काम करेगा उससे टूट फूट तो होगी, गुलदान पुराने तो थे ही, आपको नौकर नहीं रखना है, बेकार झूठे आरोप लगाती रहती हैं। शाम को मैं पहुंचा तो बोली, हाँ सरकार खता हो गई, साफ करने पर एक गुलदान दूसरे पर गिर गया और दोनों टूट गए। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूँ, क्या करूँ, दिन भर दफ्तर की हाय हाय, शाम से घर की परेशानियाँ। एक दिन मैंने कहा, चंपा मेरे जूते में एक कील निकल आई है, उसको किसी चीज़ से ठोक दो। वो चुप रही, शायद मन में ये सोचती रही होगी कि जिस समय नौकर रखा था उस समय ये नहीं कहा था कि ये काम भी उसके जिम्मे होगा, शायद इसी विचार से उसने उसमें हाथ तक नहीं लगाया। मुझे सुबह को कील वैसी ही मिली तो मैंने उससे पूछा, तूने कल शाम को जो कील दबाई थी वो रात में फिर निकल आई, तो वो उत्तर देती है, बाबू जूते पुराने हैं कहाँ तक चलेंगे, इन्हें बदल डालो और अच्छे दाम देके कुछ अच्छे जूते ले लो कि कुछ चलें। इस भांति जब मेरा नाक में दम आ गया तो मैंने उसे निकाल दिया और फिर कोई मेहरी ना रखी, इस प्रकार खोया हुआ चैन आप ही वापस मिल गया। सच है अब नौकरों का समय नहीं रहा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।